समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ऊर्जा, कुछ सकारात्मक करने की, कुछ नया सोचने की और किसी नए की शुरुआत करने की सबसे ज्यादा सुबह के समय होती है। सुबह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने कार्यों का आकलन कर सकते हैं। तो क्यों ना आज सुबह खुद को थोड़ा वक्त दिया जाए और फुर्सत से एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं को महसूस किया जाए। इसी के साथ ही आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग आकर्षिता, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल यू लवली फोक्स ट्यून इन टू अस दिस मॉर्निंग। कीप योर मंडे ब्लूज अवे फ्रॉम यू गाइस एंड स्टार्ट द डे विद अ डोज ऑफ आर्ट सवेरे। सो आकर्षिता, लेट्स स्टार्ट विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई पर विशेष चर्चा मॉनसून सत्र में होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। श्री रिजिजू ने कहा कि बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी।
Prime Minister Narendra Modi has said that Operation Sindoor has demonstrated to the world how India will respond if its sovereignty is attacked. Mr. Modi said that military operation has instilled a new sense of self-confidence across the country. He was speaking at the birth anniversary celebrations of the iconic Chora king Rajendra Chora I at Gangaikonda Chorapuram in Tamil Nadu. Prime Minister said Operation Sindoor also proved that there are no safe havens for enemies and terrorists targeting India.
आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है।
Prime Minister said the Choras established strong political and trade ties with Sri Lanka, the Maldives and Southeast Asia.
कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन से 25 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी है। इटली की एक विश्वविद्यालय के अध्ययन से ये बात सामने आई है कि कोविड के प्रति 5400 टीके से कम एक व्यक्ति की जान बचाई गई। कोविड संक्रमण से पहले टीका लगवाने वाले लगभग 82% लोगों की जान बचाई जा सकी। इनमें 90% से अधिक लोग 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के थे। 57% लोगों की जान कोविड संक्रमण से पीड़ित होने के शुरुआती दिनों में बचाई गई। पहले भी इस संबंध में कई अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन इटली के विश्वविद्यालय का वर्तमान अध्ययन अधिक व्यापक है।
Prime Minister Narendra Modi, in his Mann Ki Baat program yesterday, mentioned that Kaziranga National Park and Tiger Reserve's beauty is unparalleled and it safely houses species which are endangered worldwide. The Prime Minister appreciated the first grassland bird survey conducted in Kaziranga and said that this will definitely boost the wildlife conservation effort and save the national park's natural beauty.
Assam ka Kaziranga National Park, वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल है। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सके और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सके।
The first ever grassland bird survey led by a team of forest officials, bird experts, scientists and conservationists recorded 43 grassland species across Kaziranga three wildlife divisions. For the Mizos in Mizoram, cleanliness is a part of their culture and tradition. During the olden days, the Mizo youth came out in large numbers almost every week and every month to clean their villages and surroundings. Continuing with that tradition, the government intervention in recent times, cleanliness drives have taken a new momentum in the state of Mizoram. We have more from our correspondent.
In Mizoram, Lunglei town in southern Mizoram shined bright in the recent Swachh Survekshan Award, which was held at New Delhi, bagging the honor with the promising Swachh Shedar of Mizoram Award. Speaking to Akashvani News, Lunglei Municipal Council LMC Vice Chairman Kelerino Ma said that the award is a recognition of the concerted efforts jointly taken up by the Municipal Council and NGOs such as YMA, MHEP, MZP and others. He says,
"We are truly grateful that Lunglei has been recognized as the promising Swachh Shahar of Mizoram in the Swachh Survekshan 2024-2025. This recognition is a moment of pride and unity for the people of Lunglei. We have come a long way."
The Swachh Survekshan Awards are part of the Swachh Bharat Mission Urban initiatives and evaluate towns and cities across India based on various cleanliness indicators. This year's awards mark the 9th edition with a total of 78 awards conferred on various awardees. Since its debut in 2016, Lunglei has won 6 Swachh Survekshan Awards with Gingangte. This is Isaac from Akashvani News, Aizol.
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर आज मलेशिया में बैठक होगी। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई थाईलैंड के शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मैनेट के भी बातचीत में शामिल होने की आशा है। इस बीच थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष में मरने वालों की संख्या 32 हो गई है और 130 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। कल चौथे दिन भी ये संघर्ष जारी रहा। थाईलैंड ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात स्कॉटलैंड में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने दोनों देशों को संघर्ष जारी रहने पर व्यापार समझौतों पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मलेशिया में आज होने वाली वार्ता तनाव कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। संघर्ष विराम के लिए कंबोडिया और थाईलैंड के सहमत होने की श्री ट्रंप की घोषणा के बाद कल भी दोनों देशों के बीच गोलाबारी जारी रही।
And in sports, we bring you the latest updates from the world of cricket and chess.
India pulled off a great fight back to hold England to a draw in the fourth test of the Anderson Tendulkar Trophy at Old Trafford, keeping the series alive. The men in blue batted for more than 5 sessions in their second innings to reach 425 for 4 when the draw was agreed upon. Washington Sundar with an unbeaten 101 and Ravindra Jadeja not out on 107 batted together for over 2 sessions to help India avoid a decisive defeat and secure one of the most resilient draws runs in recent test history. Earlier, after conceding a 311 run lead and losing both openers for Ducks in the second innings, India showed tremendous determination to achieve a favorable result. Skipper Shubman Gill scored a century and opening batsman K.L. Rahul played a crucial knock of 90 runs, laying the foundation for India's fight back. England remained 2-1 up in the series. The final test will be played at the Oval beginning on Thursday. In chess, Grandmaster Kuneru Hampi and International Master Divya Deshmukh are set to face off in rapid and blitz tie breaks today to decide the winner of the FIDE Women's World Cup in Batumi, Georgia. The match will start at 1:35 p.m. Indian Standard Time. After two intense classical games ended in draws, the fate of the All-Indian clash now hinges on faster formats where time control and composure will play a crucial role. With Sudhir, Nithya Franco, Akashwani News, Delhi.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं सुभद्रा।
Yes, Akashita, the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board has announced a temporary suspension of piped water supply in zones 7 to 13 and parts of Tambaram Corporation from July 30 to August 1. This is due to interconnection work delaying the full-scale delivery of 530 million litres of water per day from the Chembaram Pakkam water treatment plant. The disruption is part of efforts to connect a new 2,000 millimeter pipeline to the existing system, which will eventually double the supply from 265 to 530 million liters daily. That's MLD. And Akashita, over to you for the next one.
जी, और अब खबरें दिल्ली से. पर्यटन मंत्रालय राजधानी के जनपद स्थित भारत पर्यटन कार्यालय में आज तीज महोत्सव का आयोजन करेगा. इसमें भारतीय विरासत के रंगों, परंपराओं और भावना को प्रदर्शित किया जाएगा. इस महोत्सव में आगंतुक राजस्थानी लोक नृत्य, बंगाल की स्वादिष्ट व्यंजन, मेहंदी आर्ट और उत्तर भारत के प्रसिद्ध खान पान के साथ ही घर सजावट के सामानों का आनंद भी ले सकते हैं. पर्यटन मंत्रालय ने बताया है कि तीज महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है. ये पर्व मानसून के आगमन का प्रतीक है और देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का भी प्रतीक है. यह त्योहार अपने पारंपरिक संगीत, नृत्य, मेहंदी झूलों, उत्सवी परिधानों, स्वादिष्ट व्यंजनों, समृद्धि और खुशियों के लिए भी जाना जाता है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल पीतमपुरा डिस्ट्रिक्ट पार्क और शालीमार बाग स्थित करनील वाल बाग का निरीक्षण किया. निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने दोनों पार्कों में सौंदर्यीकरण और नागरिकों की सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने पार्कों के निरीक्षण के दौरान जल निकाय के पुनर्जीवन पर विशेष बल दिया, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा मिले. उन्होंने पार्क में लगे जिम उपकरणों की मरम्मत, पार्क की सुरक्षा और लाइटिंग के नवीनीकरण के साथ साथ म्यूजिकल फाउंटेन को दोबारा शुरू करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने शालीमार बाग क्षेत्र के बीएफ ब्लॉक में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए फुटपाथ, लाइट तथा सौंदर्यीकरण के कार्य का भी उद्घाटन किया. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार ने शहर की झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि हटाई जा रही पात्र झुग्गी के लोगों को मकान देने की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कल ये बात शालीमार बाग स्थित फाटक वाली झुग्गी कैंप पहुंचकर झुग्गी वासियों से बातचीत में कही.
Yes, and Akashita, taking them to Karnataka now. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar appreciated the enterprising spirit of people from coastal Karnataka. Inaugurating Kundapura Kannada Festival in Bengaluru yesterday, he said the region has brought out educational institutions, hotels, hospitals and banks. The minister appreciated the coastal Karnataka region for propagating culture, heritage and traditions. He assured the people from coastal Karnataka of providing every possible opportunity for their interests to prosper. He further pointed out that the region is endowed with tourist destinations. Mr. Shivakumar promised a new tourism policy to attract tourists and enrich the economy. He noted that Bengaluru is a city that attracts professionals and youngsters in general with prospects. The minister added that with open invitation to everyone to come to Bengaluru, the government is also working to protect the land, water, language and culture of the state. Mumbai News Now, Akarshita.
जी, और अब खबरें मुंबई से. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कटे होंठ और थालू के साथ पैदा हुए बच्चों के मासूम चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए महास्माइल्स क्लेफ्ट जागरूकता और उपचार अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत उन्हें इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी और इस जन्मजात समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी. विदर्भ में इस तरह के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग की अपील की है. इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए स्वयंसेवी संगठन स्माइल ट्रेन इंडिया, बजाज फिनसर्व ने अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हाथ मिलाया है. ये पहला अब एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन स्माइल ट्रेन इंडिया और बजाज फिनसर्व के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयासों के एक भाग के रूप में पूरी तरह से निःशुल्क लागू की जाएगी. ये एक आशाजनक आंदोलन है जिसका उद्देश्य हजारों बच्चों को एक नया जीवन देना है. वहीं शहरी ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को पाटने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर के मेट्रो भवन में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंगनवाड़ी परियोजना मिशन बाल भरारी का उद्घाटन किया. इस पायलट परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक बाल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत डिजिटल उपकरणों को शामिल करना है. जिला परिषद के प्रबंध निदेशक विनायक महामुनि के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आंगनवाड़ियों में बच्चों में रचनात्मकता, जिज्ञासा, आत्मविश्वास को प्रेरित करना है, जो कि शहरी समकक्षों को प्रीमियम प्री स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के समान होगा.
हैदराबाद न्यूज नाउ. Oh, I beg your pardon. She still has some more to talk.
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अगले चार वर्षों में भारत की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है. इसमें राज्य भर में हर 3 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जनभागीदारी और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के महत्व पर बल दिया.
Hyderabad News Now. People from different walks of life in Telangana have drawn inspiration from the mentions made by Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program yesterday. Mr. Venu, who is a lecturer in Mulugu in Telangana, said, sharing the excitement of the nation about Shubhanshu Shukla safely reaching Earth and the Prime Minister's mentions about the progress that is being taken in the textile sectors are inspiring.
Venu, I have been working as an English lecturer in Mulugu. As I have seen the program of Mann Ki Baat regarding our Honorable Prime Minister, I would like to share. Really, I felt very happy while hearing the great message given by our Honorable Prime Minister. Just he spoke something about recently the great achievement just made by Shubhanshu Shukla, who has landed on our Earth safely, and he felt very happy and he shared his happiness with everybody regarding his achievement.
और अब खबरें कोलकाता से. भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में बंगाली कामगारों के उत्पीड़न के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है. केंद्रीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता डॉ सुकांत मजुमदार ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता रोहिंग्याओं और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को पश्चिम बंगाल में पहचान पत्र बनवाने में मदद कर रहे हैं और बाद में वे राज्य के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं. और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल. आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. वहीं मुंबई में भी सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ मध्यम वर्षा का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है. और अगर बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. तापमान 33 और 26 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं.
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ.
एंड आकर्षिता, बिफोर वी गो अहेड विद द इवेंट्स ऑफ द डे, यू नो एवरी ईयर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट द इफेक्ट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस विच कैन कॉज लिवर इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू सिवियर लिवर रिलेटेड एलिमेंट्स. So what do we do for this? Self-education is the best way to learn all about the disease. Read, research and also talk to healthcare professionals for guidance.
और लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी हेपेटाइटिस को चिकित्सा जगत में साइलेंट किलर भी कहा जाता है. इसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और समय रहते इससे लड़ने के उपाय करने के उद्देश्य से आज हम ये दिन मना रहे हैं. तो और आइए जानते हैं, बात करते हैं कि 28 जुलाई को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं. वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के मौके पर ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज और हेप बी वायरस के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास करने वाले ये पहले शख्स थे. और अगर हम बात करें आकाशवाणी की, तो आज आकाशवाणी बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला है इसी विषय पर. हम अपने श्रोताओं को इसके बारे में बताना चाहते हैं कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम में हेपेटाइटिस से बचाव और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा. यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान ILBS के यकृत रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल अरोड़ा परिचर्चा में भाग लेंगे. श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से यकृत रोग की शीघ्र पहचान, यकृत रोगों की रोकथाम और उपचार तथा यकृत को स्वस्थ रखने के तरीकों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं. कल रात 9:30 बजे से प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371717 और 0112331444 तथा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. तो हम अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपने जो प्रश्न है वो जरूर भेजें हमें, और जिससे वो इस बीमारी को रोकथाम में जो है मदद भी मिल सकती है और वो इसके बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं.
Yes, and also observed this day, World Nature Conservation Day of the year 2025. It highlights the utmost need for the conservation of nature's resources and biodiversity. So friends, work together as one for safeguarding. And of course, also an emphasis is laid on collective responsibility towards safeguarding our ecosystems. So we are celebrating this day globally with a wide range of activities that are required to protect natural environments and biodiversity. And Akashita, let's get to some events now.
1821 में आज के दिन ही पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और 1868 में अमरीकी संविधान का 14वां संशोधन पारित हुआ, जिसने अफ्रीका मूल के नागरिकों को नागरिकता और समान अधिकार प्रदान किए.
1858, the fingerprint was used for the first time for identification purposes by Sir William James Herschel, a British administrator in India. And 1983, NASA launched the commercial communication satellite Telstar 3A.
और आज के दिन ही 1995 में वियतनाम आसियान का सदस्य बना था.
And let's move to some births and deaths. Akashita, the musician who has impacted new age music, renowned classical flautist, that's bansuri player Ronu Majumdar, celebrates his birthday today. And of course, he's received innumerable awards and instrumental in bringing a fusion of West and East by collaborating with renowned musicians abroad. From Indian classical to Western classical, Johann Sebastian Bach, one of the greatest German composers of all time, passed away this day at the age of 65. And of course, he is celebrated as a creator of many masterpieces of church and instrumental music. And his compositions represent the best of Baroque era. So a sample here, friends, a haunting and a beautiful melody, Jesu, joy of man's desiring.
आज भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी की पुण्यतिथि है। उन्होंने बांग्ला भाषा में बेहद संवेदनशील तथा वैचारिक लेखन के माध्यम से उपन्यास तथा कहानियों से साहित्य को समृद्धशाली बनाया। अपने लेखन कार्य के साथ साथ महाश्वेता देवी स्त्री अधिकारों, दलितों तथा आदिवासियों के हितों के लिए जूझते हुए व्यवस्था से संघर्ष किया। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 184 की मां आदि। और आज ही तमिल अभिनेता, फिल्म निर्माता, गीतकार और पार्श्व गायक धनुष का जन्मदिन है। उनका असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित फिल्म थुल्लु वाधो इलमई से अभिनय की शुरुआत की। धनुष को उनके अभिनय, गायन और लेखन कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें पोला धवन, यारादीनी मोहिनी, आडुकलम, रांझणा, असुरन, थिरु चित्रांबलम और वाथी शामिल है। धनुष ने आडुकलम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उन्होंने रांझणा से हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई।
The iconic British rock band Pink Floyd's inimitable keyboardist, arranger, composer, vocalist, founder member, Richard Wright, took birth this day. Richard's richly textured keyboard layers were a vital ingredient and a distinctive characteristic of Pink Floyd's sound. So friends, at the peak of his career, he had battled cancer and left us at the age of 65 in the year 2008.
आज भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जगदीश राज खुराना की पुण्यतिथि है। जगदीश राज के नाम 144 अलग अलग फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का रिकॉर्ड है। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उनकी लोकप्रिय फिल्में रहीं दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर, ईमान, धर्म, गोपीचंद, जासूस आदि। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
मिस्टर मोहन, मैंने फाइल को आपके हवाले करते हुए कहा था कि ये फाइल बहुत ही जरूरी है, इसे संभाल के रखना, और आप मुझसे एक बच्चे की तरह कह रहे हैं फाइल खो गई।
And friends, singer guitarist who founded Dr. Herc and the Medicine Show, a very peppy rock band, George Cummings was born this day. And friends, co-founder, drummer, singer and also songwriter of the British blues rock band Bad Company, Simon Kirk, turns a year older today.
Moving.
और सुभद्रा अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, नमस्कार।